एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार। आज हम एक ऐसी दुनिया में झांकने वाले हैं जो हजारों साल पुरानी है, लेकिन जिसकी गूंज आज भी हमें सुनाई देती है।
बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं प्राचीन ग्रीस और रोम के साहित्य की, और हमारे गाइड होंगे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर विलियम एलन और उनकी किताब क्लासिकल लिटरेचर अ वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन।
हाँ, और ये किताब ना मतलब एक छोटा पैकेट बड़ा धमाका है, सही में।
अच्छा।
हाँ, मतलब ये जो इतनी बड़ी साहित्यिक परंपराएं हैं ना ग्रीस और रोम की, उनका एक संक्षिप्त पर बहुत गहरा परिचय कराती है ये।
पर एक सवाल उठता है, मतलब आज की जो भागदौड़ भरी जिंदगी है उसमें हमें होमर या सोफोकल्स या वर्जिल की कहानियों से क्या लेना देना? क्या ये सिर्फ इतिहास की बातें हैं?
यही तो मजेदार सवाल है, और एलन की किताब यही दिखाती है कि ये कहानियां सिर्फ म्यूजियम की चीजें नहीं है। ये हमारी सोच, हमारी कहानियां, यहाँ तक कि हमारी राजनीति और समाज, इन सबको समझने की चाबियां हैं एक तरह से।
अच्छा, तो आज हम दो स्रोत सारांशों के जरिए एलन के काम को थोड़ा और गहराई से देखेंगे।
हाँ, और समझेंगे कि ये प्राचीन साहित्य आज भी इतना जिंदा, इतना रेलेवेंट क्यों है। तो सबसे पहले मिलते हैं हमारे गाइड से, विलियम एलन। जैसा आपने कहा, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में क्लासिक्स के जाने माने प्रोफेसर है।
हाँ, क्लासिक्स यानी प्राचीन ग्रीक और रोमन साहित्य, और वो यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑक्सफोर्ड में फेलो भी हैं।
और उनकी जो खास रुचि है ना, वो ग्रीक महाकाव्यों में है, जैसे होमर की इलियड और ओडिसी,
और एथेंस के जो मशहूर दुखांत नाटक हैं, ट्रेजेडीज, सोफोक्लीज, यूरिपिडीज, इनमें भी उनकी गहरी पकड़ है। अकादमिक दुनिया में तो उनका बड़ा नाम है ही।
सही कहा। लेकिन एलन सिर्फ एक किताबी विद्वान नहीं है, बात यह है कि उन्हें इस विषय को दिलचस्प बनाना आता है।
अच्छा, कैसे?
देखिए, पहली बात तो ये कि उनका ज्ञान बहुत गहरा है, तो वो मुश्किल बातों को भी ना बहुत साफ साफ समझा सकती हैं। वो सिर्फ तथ्य नहीं बताते, बल्कि उनका मतलब समझाते हैं।
और दूसरी खास बात
वो है उनका पढ़ाने का अनुभव। ऑक्सफोर्ड में ट्यूटर रहे हैं, तो उन्हें पता है कि ये विषय जो अक्सर मुश्किल लगता है, उसे आम पाठक के लिए आसान और रोचक कैसे बनाया जाए।
हाँ, भाषा का भी फर्क पड़ता होगा।
बिल्कुल, उनकी भाषा सीधी सरल है, वो भारी भरकम टेक्निकल शब्दों से बचते हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई दोस्त आपको पुरानी रोमांचक कहानियां सुना रहा हो, जो असल में बहुत मायने रखती हैं।
तो ये किताब आखिर है किस बारे में, मतलब क्या है इसका दायरा?
सोचिए, करीब 1000 साल का साहित्यिक सफर है ये।
1000 साल?
हाँ, होमर के समय से, यानी लगभग 750 ईसा पूर्व से लेकर रोमन साम्राज्य के पतन तक, मतलब 5वीं सदी ईस्वी तक, ग्रीस और रोम की पूरी साहित्यिक दुनिया का एक नजारा।
लेकिन जैसा आपने कहा, ये कोई लिस्ट नहीं है कि पहले ये फिर वो?
नहीं, बिल्कुल नहीं, ये बोरिंग लिस्ट नहीं है। एलन का नजरिया थीमेटिक है, मतलब वो विषयों के हिसाब से चलते हैं। वो पूछते हैं, भाई क्लासिकल साहित्य असल में है क्या, और आज ये क्यों जरूरी है? तो ये किताब हर उस इंसान के लिए है जिसे पश्चिमी साहित्य और संस्कृति की जड़ों को समझने में दिलचस्पी है, और इसके लिए ग्रीक या लैटिन जानने की जरूरत नहीं।
तो ये एक तरह की खोज यात्रा हुई पाठक के लिए?
हाँ, कह सकते हैं। एलन शुरू में ही क्लासिकल शब्द का मतलब समझाते हैं, और एक बहुत दिलचस्प बात बताते हैं कि कैसे कहानियां पहले सिर्फ सुनाई जाती थीं। ओरल कल्चर था।
अच्छा, मतलब लिखने से पहले?
हाँ, और फिर लिखने का चलन शुरू हुआ, रिटन कल्चर आया। होमर जैसे कवियों को समझने के लिए ये जानना बहुत जरूरी है।
और फिर वो उन बड़े विचारों और विषयों पर आते हैं जो क्लासिकल साहित्य की जान है।
बिल्कुल, जैसे मिथक, मिथ। एलन कहते हैं, ये सिर्फ झूठी कहानियां नहीं है, ये दुनिया और इंसान की हालत को समझने का एक ताकतवर ढांचा थी, उस जमाने का एक तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम कह लीजिए।
दिलचस्प तुलना है।
फिर प्रेम, इच्छा, कामुकता, जैसे कवियत्री सैफो की बहुत ही पर्सनल कविताएं हैं, या फिर रोमन कवि ओविड के थोड़ी शरारती उपदेश देने वाली रचनाएं, इंसानों और देवताओं के बीच का वो अजीब, कभी कभी तनाव भरा रिश्ता।
देवताओं की बात भी है इसमें?
हाँ, बिल्कुल। और महाकाव्यों में वीरता, हीरोइज्म का क्या मतलब था? क्या वो हमेशा एक जैसा था? और ये कि साहित्य समाज में क्या भूमिका निभाता था? क्या वो सिर्फ मनोरंजन के लिए था?
लगता है दायरा वाकई बहुत बड़ा है। आपने कहा होमर, वर्जिल।
हाँ, होमर और वर्जिल के महाकाव्य, फिर एस्किलस, सोफोकल्स, यूरिपिडीज के दुखांत नाटक, अरिस्टोफिनीज के मजेदार कॉमेडी नाटक।
इतिहासकारों का भी जिक्र है?
हाँ, हेरोडोटस, अर्थ्यूसिडाइड्स जैसे इतिहासकार, डेमोस्थनीज और सिसरो जैसे नेताओं के भाषण, मतलब सब कुछ शामिल है इसमें।
और सबसे अहम बात जो आपने कही थी, रिसेप्शन।
हाँ, रिसेप्शन मतलब कि इन रचनाओं को बाद की सदियों में कैसे पढ़ा गया, कैसे समझा गया, कैसे अपनाया गया और कैसे उन पे बहस हुई।
अच्छा,
और असल में यही चीज दिखाती है कि ये साहित्य मरा नहीं है, ये जिंदा है। एलन का निचोड़ यही है कि क्लासिकल साहित्य पढ़ना मतलब 2500 साल पुरानी एक ऐसी बातचीत का हिस्सा बनना है जो आज भी चल रही है।
एक तरह से पश्चिमी संस्कृति के डीएनए जैसा।
बिल्कुल।
चलिए अब थोड़ा और अंदर चलते हैं, किताब के अध्यायों पर एक नजर डालते हैं। पहला अध्याय, जैसा आपने बताया, पूछता है क्लासिकल साहित्य क्या है।
हाँ, इसमें एलन साफ करते हैं कि ये प्राचीन ग्रीस और रोम का साहित्य है। समय सीमा भी बताते हैं, मोटे तौर पर 750 ईसा पूर्व से 5वीं सदी ईस्वी तक।
लेकिन ये भी कहते हैं कि कौन सी रचना क्लासिकल है, ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है।
नहीं, बिल्कुल नहीं, ये तो सदियों से चली आ रही पसंद और चुनाव का नतीजा है।
और वो फिर से इस बात पर जोर देते हैं कि शुरू में ये साहित्य मौखिक था, सुनाया जाता था, बाद में लिखा गया।
और ये भी कि ये अक्सर सार्वजनिक था।
हाँ, ये बहुत जरूरी बात है। नाटक बड़े बड़े त्योहारों में खेले जाते थे, भाषण भरी सभाओं में दिए जाते थे। ये अकेले में चुपचाप पढ़ने वाली चीज कम थी, समाज के जीवन का हिस्सा ज्यादा थी।
अच्छा, तो ये सिर्फ किताबें नहीं थीं बल्कि लाइव इवेंट्स थे।
दूसरे अध्याय में एलन मिथकों की बात करते हैं।
हाँ, और वो आजकल की सोच को चुनौती देते हैं। हम मिथक का मतलब झूठी कहानी समझते हैं ना,
हाँ, आमतौर पर तो यही समझते हैं।
लेकिन एलन कहते हैं कि प्राचीन दुनिया में ऐसा नहीं था। मिथक दुनिया, देवताओं और इंसानों को समझने का एक मुख्य तरीका था, एक लचीला ढांचा था जिसे लोग इस्तेमाल करते थे।
और ये बदलते भी रहते थे।
बिल्कुल, स्थिर नहीं थे। लेखक अपनी जरूरत के हिसाब से उन्हें बदलते रहते थे। जैसे सोफोकल्स ने ओडिपस की जानी पहचानी कहानी ली कि कमजोरियों जैसे गहरे सवाल उठाने के लिए किया। मिथक एक तरह की कॉमन लैंग्वेज थी जिनके जरिए उस समय के मुद्दों पर भी बहस हो सकती थी।
तीसरा अध्याय प्यार, इच्छा और सेक्स के बारे में है। ये क्लासिकल दुनिया के इंसानी पहलू को दिखाता है।
हाँ, और एलन बताते हैं कि इस मामले में कितने अलग अलग नजरिए कहे। एक तरफ तो ग्रीक कवयित्री सैफो हैं, उनकी कविताएं स्त्री की इच्छाओं को बड़ी गहराई और बहुत ही निजी अंदाज में बयान करती हैं।
और दूसरी तरफ?
दूसरी तरफ रोमन कवि ओविड है, उनका अंदाज ज्यादा चंचल है, मजाकिया है, कभी कभी व्यंग्यात्मक भी। खासकर उनकी किताब आर्स अमाटोरिया, जिसका मतलब है प्रेम की कला।
अच्छा, प्रेम की कला।
हाँ, और फिर प्लेटो जैसे दार्शनिक भी थे, उन्होंने सिंपोजियम जैसी रचनाओं में प्रेम ईरोस को समझाते हुए उसे ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता बताया। मतलब इंसानी रिश्तों के हर रंग को उन्होंने टटोला था बड़ी ईमानदारी से।
चौथा अध्याय देवताओं और मनुष्यों, गॉड्स एंड मेन के रिश्ते पर है। ये बड़ा दिलचस्प लगता है। आपने कहा था कि ग्रीक और रोमन देवता आजकल के भगवानों जैसे नहीं थे।
हाँ, बिल्कुल नहीं, वो सर्वशक्तिमान या हमेशा अच्छे नहीं थे, वो इंसानों जैसे थे। उनमें जलन थी, गुस्सा था, वासना थी, सब कुछ था।
तो फिर उनका फायदा क्या था, मतलब लेखक उन्हें क्यों लाते थे कहानियों में?
फायदा ये था कि देवताओं का ये इंसानी रूप लेखकों को बड़े फिलोसॉफिकल सवाल पूछने का मौका देता था।
जैसे कि?
जैसे भाग्य बड़ा है या इंसान की मर्जी, न्याय क्या चीज है, अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है, क्या हम इंसान देवताओं के हाथ की कठपुतली हैं। साहित्य ही वो मैदान था जहां इन मुश्किल अस्तित्व से जुड़े सवालों से जूझा जाता था।
पांचवा अध्याय महाकाव्य पर है, खासकर नायक और देवताओं पर। यहां एलन दो महान परंपराओं की तुलना करते हैं, ग्रीस की होमर की इलियड और रोम की वर्जिल की एनिड। हाँ, और दोनों के योग बिल्कुल अलग हैं। इलियड का हीरो है अकिलीस, वो एकदम टिपिकल ग्रीक हीरो है, उसे अपनी शान, अपना गौरव सबसे प्यारा है। क्लियोस कहते हैं उसे।
क्लियोस मतलब
युद्ध में मिली प्रसिद्धि और सम्मान, उसके लिए ये सबसे ऊपर है, भले ही उसके गुस्से से पूरे समाज को नुकसान उठाना पड़े। उसका गुस्सा ही पूरी कविता को चलाता है।
और रोम का हीरो
एनियस,
वो इसके ठीक उलट है। वर्जिल का हीरो एनियस आदर्श रोमन हीरो है, उसके लिए व्यक्तिगत इच्छा से ज्यादा जरूरी है उसका कर्तव्य, पिएटास कहते हैं इसे।
पिएटास?
हाँ, मतलब परिवार, अपनी प्रजा और रोम की स्थापना का जो ईश्वरीय मिशन उसे मिला है उसके प्रति जिम्मेदारी।
एनियस अपनी खुशी कुर्बान कर देता है रोम के भविष्य के लिए। ये ऑगस्टस के राज की तारीफ में लिखा गया था।
तो ये तुलना दिखाती है कि वीरता की सोच कैसे बदली।
हाँ, और ये भी कि ग्रीक और रोमन समाज के मूल्य कितने अलग थे। ये तो बड़ा फर्क है, एक हीरो अपने लिए जी रहा है, दूसरा समाज के लिए। छठा अध्याय ट्रेजेडी यानी दुखांत नाटक और शहर पर है। एलन कहते हैं कि ग्रीक ट्रेजेडी, खासकर 5वीं सदी ईसा पूर्व के एथेंस की, शायद सबसे बौद्धिक और भावनात्मक रूप से असरदार साहित्यिक रूप थी।
और सबसे जरूरी बात जो एलन बताती हैं, ट्रेजेडी सिर्फ मनोरंजन नहीं थी, ये एक लोकतांत्रिक, नागरिक और धार्मिक संस्था थी।
संस्था
मतलब?
मतलब नाटक डायोनिसिस देवता के त्योहार पर खेले जाते थे। पूरा शहर इकट्ठा होकर ऐसी कहानियां देखता था जो इंसान के सबसे मुश्किल, सबसे अंधेरे पहलुओं को कुरेदती थीं।
उदाहरण के लिए,
जैसे सोफोकल्स की एंटीगॉन, उसमें राज्य के कानून और व्यक्ति के अंतरात्मा के बीच टकराव दिखाया है, या फिर यूरिपिडस की मीडिया, जो दिखाती है कि जुनून और बदला कितना भयानक हो सकता है।
बाप रे, मतलब नाटक देखना एक तरह से सामाजिक और नैतिक मंथन का हिस्सा था शहर के लिए।
बिल्कुल, गहन नैतिक, सामाजिक और राजनीतिक सवालों पर सामूहिक रूप से सोचने विचारने का एक सार्वजनिक मंच था ये। 7वां अध्याय राजनीति और अनुनय, पॉलिटिक्स एंड परसुएजन पर है। यहाँ कविता और नाटक से हटकर गद्य यानी प्रोज की बात होती है, भाषण कला, ओरेटरी और इतिहास लेखन।
हाँ, क्योंकि एथेंस जैसे लोकतंत्र और रोमन गणराज्य में अपनी बात मनवाने की कला, जिसे रेटोरिक कहते हैं,
रेटोरिक, हाँ,
वो बहुत जरूरी थी। एलन एथेंस में डेमोस्टनीज और रोम में सिसरो जैसे महान वक्ताओं के भाषणों की चर्चा करती हैं।
और इतिहास लेखन?
फिर वो इतिहास लेखन के जन्म पर आती हैं। हेरोडोटस, जिन्हें इतिहास का पिता कहा जाता है, उन्होंने अलग अलग संस्कृतियों के बारे में खूब लिखा, पूछताछ की।
और थ्यूसिडाइड्स?
हाँ, उनकी तुलना में थ्यूसिडाइड्स ने पेलोपोनेशियन युद्ध का ज्यादा वैज्ञानिक और राजनीतिक विश्लेषण किया। उन्होंने समझने की कोशिश की कि युद्ध क्यों होते हैं, इंसानी स्वभाव और ताकत की राजनीति के नजरिए से। ये विश्लेषण का एक नया, ज्यादा एनालिटिकल तरीका था।
और आखिरी 8वां अध्याय है रिसेप्शन, द रिसेप्शन ऑफ क्लासिकल लिटरेचर। या एलन अपनी मुख्य बात पर वापस आते हैं, है ना?
हाँ बिल्कुल, वो बताते हैं कि इन प्राचीन किताबों का बाद का जीवन कैसा रहा, मतलब इन्हें सदियों तक कैसे सहेज कर रखा गया, कैसे इनके अनुवाद हुए, इनकी व्याख्याएं की गईं और इन्हें नए सिरे से कैसे रचा गया।
ये जानना भी जरूरी है।
बहुत जरूरी। एलन जोर देते हैं कि क्लासिक्स के साथ हमारा रिश्ता हमेशा एक डायलॉग, एक संवाद का रहा है, जैसे पुनर्जागरण में इन्हें फिर से बड़े उत्साह से खोजा गया।
हाँ, सुना है।
बाद में अलग अलग राजनीतिक विचारधाराओं ने अपने मतलब के लिए इनका इस्तेमाल किया, और आज भी आप देखें तो जेम्स जॉयस जैसे लेखक यूलिसिस में ओलिसी का इस्तेमाल, या जीन अनवी जैसे नाटककार एंटीगोन का आधुनिक रूप।
हाँ हाँ,
वो क्लासिकल मिथकों को अपने समय की बातें कहने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये अध्याय साबित करता है कि क्लासिक्स कोई म्यूजियम में रखी चीज नहीं, बल्कि प्रेरणा और बहस का एक जिंदा सोता है, जिसे हर पीढ़ी नया रूप देती है।
तो इस पूरी किताब से कुछ बड़े सबक या संदेश क्या निकलते हैं, अगर हम उन्हें समेटना चाहें?
मेरे ख्याल से पहला और सबसे बड़ा सबक तो यही है कि इंसानी जज्बात और हालात हमेशा एक जैसे रहते हैं, इंड्योरिंग रेलेवेंस ऑफ द ह्यूमन कंडीशन जिसे कहते हैं। एलन यही दिखाती हैं कि ये साहित्य आज भी हमें अपना सा लगता है, क्योंकि ये उन्हीं चीज़ों की बात करता है जिनसे हम आज भी जूझते हैं, दुख, प्यार, लड़ाई, परिवार, लीडरशिप, जिंदगी का मतलब।
हाँ, अकिलेस का गुस्सा हो, ओरिपस का सज्जन ना हो, या डीडो का प्यार में टूटना, हमें अपनी ही झलक दिखती है, जिसे आज भी हम अपनी महत्वाकांक्षा और रिश्तों में या अपनी ड्यूटी और इच्छाओं में फंसे रहते हैं।
बिल्कुल। दूसरा बड़ा संदेश है साहित्य की सामाजिक और राजनीतिक ताकत, लिटरेचर एज अ सोशल एंड पॉलिटिकल फोर्स।
एलन बार बार कहती हैं कि क्लासिकल साहित्य सिर्फ कला के लिए नहीं था, वो समाज का हिस्सा था।
जैसे एथेंस की ट्रेजेडी शहर के लिए सोचने समझने का मंच था।
हाँ, और रोम का महाकाव्य देश की पहचान बनाता था, राजा की ताकत को सही ठहराता था, भाषण कला से कानून और राजनीति चलती थी, जैसे आज फिल्में या गाने समाज में बहस छेड़ देते हैं या राजनीतिक माहौल बनाते हैं।
तीसरा अहम मुद्दा है मिथ, दुनिया समझने की एक लचीली भाषा, मिथ एज अ फ्लेक्सिबल लैंग्वेज फॉर अंडरस्टैंडिंग। एलन कहती हैं कि मिथ को पिछड़ा हुआ अंधविश्वास मानना गलत है।
हाँ, वो असल में कहानी कहने का एक बहुत परिष्कृत और अडैप्टेबल तरीका था। एक ही मिथक को अलग अलग लेखक अलग अलग मतलब निकालने के लिए इस्तेमाल कर सकते थे।
जैसे हम आज भी रामायण या महाभारत की कहानियों की नई नई व्याख्याएं करते हैं, उन्हें आज के संदर्भ में देखते हैं। बिल्कुल। चौथा थीम है व्यक्ति और समाज के बीच का तनाव, टेंशन बिटवीन इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी, ये पूरी किताब में दिखता है। अपनी इच्छाएं बनाम परिवार, समाज या देवताओं की मांगे।
हाँ, वो अकेलीज और एनिस वाला उदाहरण, एक अपनी शान के लिए, दूसरा समाज के लिए, ये तो हमारी रोज की कश्मकश है। अपना करियर देखें या परिवार की जिम्मेदारियां निभाएं।
सही कहा। पांचवा, पश्चिमी साहित्य और सोच के तरीकों का जन्म, बर्थ ऑफ वेस्टर्न लिटरेरी फॉर्म्स एंड इंक्वायरी। ये किताब बताती है कि आज हम जिन साहित्यिक रूपों, महाकाव्य, ट्रेजेडी, कॉमेडी और सोचने के तरीकों, इतिहास, दर्शन, भाषण कला को जानते हैं, उनकी शुरुआत क्लासिकल दुनिया में हुई।
होमर, सोफोकल्स, थियोसिराइड्स, प्लेटो, इन्होंने सिर्फ कहानियां नहीं सुनाई बल्कि दुनिया को देखने और समझने के नए रास्ते खोले।
और छठा, कि ये दुनिया नैतिक और बौद्धिक रूप से जटिल थी, अ वर्ल्ड ऑफ मॉरल एंड इंटेलेक्चुअल कॉम्प्लेक्सिटी। एलन क्लासिकल दुनिया को सिर्फ अच्छा या बुरा, काला या सफ़ेद नहीं दिखाती, वो उसके विरोधाभास, उसकी बहसें, उसके अलग अलग नज़रिए सामने रखती हैं।
हाँ, मतलब आसान जवाब नहीं थे उनके पास।
बिल्कुल, वो मुश्किल नैतिक सवालों से जूझते थे बिना आसान जवाब दिए। और सातवां, जो रिसेप्शन वाले अध्याय से जुड़ा है, क्लासिक्स एक कभी न खत्म होने वाला संवाद है। क्लासिक्स एज एन ऑनगोइंग डायलॉग।
कि ये कोई बंद हो चुकी किताब नहीं है।
नहीं, ये एक बातचीत की शुरुआत है जिसमें हम आज भी शामिल हैं। हर नया अनुवाद, हर नई फिल्म या नाटक जो इन कहानियों पर बनता है, वो इस बातचीत में कुछ नया जोड़ता है। हम सिर्फ क्लासिक्स को पढ़ते नहीं, हम उनके साथ जुड़ते हैं, बहस करते हैं, उन्हें अपने हिसाब से ढालते हैं।
इस किताब में कई ऐसी बातें हैं जो वाकई सोचने पर मजबूर करती हैं, अगर हम एलन के कुछ मुख्य विचारों को उनके सार के तौर पर देखें तो।
हाँ, कुछ बहुत यादगार बातें हैं। जैसे पहला विचार, एलन कहती हैं, एथेनियन ट्रेजेडी सिर्फ भागने का रास्ता नहीं थी, बल्कि एक लोकतांत्रिक मंच था जहां पूरा शहर इंसान और समाज के सबसे मुश्किल सवालों का सामना करने जुड़ता था।
मतलब ये नाटक सिर्फ टाइम पास नहीं, अथीन्स के राजनीतिक और बौद्धिक जीवन का केंद्र थे। ये कितनी बड़ी बात है।
बिल्कुल। दूसरा विचार, ग्रीक हीरो अखिलेस और रोमन हीरो एनीस के बीच का फर्क दिखाता है कि कैसे एक संस्कृति जो व्यक्तिगत शान को सबसे ऊपर रखती थी, उससे एक ऐसी संस्कृति की तरफ बदलाव आया जो व्यक्ति की इच्छा को राज्य की किस्मत के नीचे रखती थी।
ये सिर्फ दो किरदारों की तुलना नहीं, ये ग्रीक और रोमन सोच के बुनियादी फर्क को दिखाता है।
सही। तीसरा विचार, प्राचीन दुनिया में मिथक को झूठ का पुलिंदा नहीं, बल्कि एक जिंदा और लचीली भाषा समझना चाहिए, जिसका इस्तेमाल लेखक मनोविज्ञान, समाज और ब्रह्मांड के बारे में सच बोलने के लिए करते थे।
ये मिथक के बारे में हमारी आम सोच को पलट देता है। मिथक सोचने का एक सोफिस्टिकेटेड टूल था।
हाँ, और चौथा विचार, क्लासिकल साहित्य की विरासत कोई म्यूजियम में रखा स्थिर स्मारक नहीं, बल्कि एक जीती जागती परंपरा है जिस पर हर आने वाली पीढ़ी ने बहस की है, जिसे दोबारा समझा है और नए सिरे से गढ़ा है।
यही किताब का निचोड़ है। क्लासिक्स जिंदा हैं क्योंकि हम उनसे लगातार बात कर रहे हैं, ये हमें भी इस बातचीत में शामिल होने का न्योता देता है। तो अब असली सवाल पर आते हैं, इन हजारों साल पुरानी बातों का आज की जिंदगी में क्या काम? क्या सच में कोई प्रैक्टिकल यूज है इनका?
हाँ हाँ, बिल्कुल है। पहला तो है बेहतर सोचने और अपनी बात रखने की क्षमता, क्रिटिकल थिंकिंग एंड पर्सुएजन स्किल्स। जब हम सिसरो के भाषण या थ्यूसीडाइड्स का विश्लेषण पढ़ते हैं ना, तो हम सीखते हैं कि तर्क कैसे बनते हैं, उनके पीछे के इरादे क्या हो सकते हैं और भाषा में कितनी ताकत होती है। ये आज ऑफिस में प्रेजेंटेशन देने या किसी मीटिंग में अपनी बात रखने में सीधे काम आ सकता है।
हाँ, ये तो है, लॉजिक और रेटोरिक समझना। दूसरा,
न्याय, कानून का राज, ये सारे मुद्दे जिनसे हम आज जूझते हैं, इनकी पहली बहसें क्लासिकल साहित्य में ही मिलती हैं।
अच्छा, जैसे?
जैसे सोफोकल्स की एंटीगोन, वो आज भी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि जब राज्य का कानून और हमारी अंतरात्मा टकराएं तो क्या करें। ये सवाल तो आज भी उतना ही रेलेवेंट है।
हाँ, बिल्कुल है। और
तीसरा, भावनात्मक समाज और हमदर्दी का विकास, इमोशनल इंटेलिजेंस एंड एम्पथी। ग्रीक ट्रेजेडी तो मैं कहूंगी इमोशनल इंटेलिजेंस की पाठशाला है।
पाठशाला कैसे?
वो हमें इंसान के चरम भावों, दुख, गुस्सा, निराशा, जलन का सामना कराती है। जब हम ओडिपस या मीडिया जैसे किरदारों के दर्द को महसूस करते हैं तो हमारी सहानुभूति बढ़ती है। अरस्तु का वो कैथार्सिस का सिद्धांत याद है?
हाँ, दया और भय के अनुभव से मन का शुद्ध होना।
बिल्कुल, वो आज भी बताता है कि कला हमें कैसे बदल सकती है, हमें ज्यादा एम्पैथेटिक बना सकती है।
और चौथा, हमारी सांस्कृतिक समझ बढ़ती है, कल्चरल लिटरेसी। पश्चिमी कला, साहित्य, फिल्मों में क्लासिकल कहानियों और किरदारों के इतने हवाले भरे पड़े हैं।
अरे हाँ, इकारस, नार्सिसस, प्रोमीथियस।
सही।
इन मूल कहानियों को जानने से शेक्सपियर से लेकर आज की फिल्मों तक को समझने में ज्यादा मजा आता है।
एलन की किताब हमारी साझा संस्कृति के सोर्स कोड खोलती है एक तरह से।
हाँ, सोर्स कोड, ये अच्छा कहा। और पांचवा, जिंदगी के बड़े सवालों पर सोचने के लिए ढांचे मिलते हैं, फ्रेमवर्क्स फॉर पर्सनल रिफ्लेक्शन।
बड़े सवाल मतलब?
मतलब अच्छी जिंदगी क्या है, इज्जत का क्या मतलब है, दूसरों के प्रति हमारी क्या जिम्मेदारी है, किस्मत या भगवान से हमारा क्या रिश्ता है। ये सवाल क्लासिकल साहित्य बार बार पूछता है। ओडिसियस की घर वापसी की लंबी यात्रा या अनीस का अपनी किस्मत से जूझना, ये कहानियां हमें अपने लक्ष्यों, अपनी नाकामियों और जिम्मेदारियों के बारे में सोचने के लिए पावरफुल मेटाफर्स देती हैं।
तो इस पूरी चर्चा से मेरे लिए सबसे बड़ा टेकअवे ये है कि ये पुरानी कहानियां सिर्फ पढ़ने की चीज नहीं है, ये खुद को और अपनी दुनिया को समझने का एक जिंदा तरीका है। और ये सोचना ही हैरान करता है कि हजारों साल पहले के लोगों की परेशानियां, उनके जज्बात, उनकी कश्मकश कितनी हद तक हमारी जैसी ही थीं।
और मेरे लिए विलियम एलन की सबसे गहरी बात ये है कि क्लासिकल साहित्य ने हमें सोचने, महसूस करने और बहस करने की एक बुनियादी शब्दावली दी है, मिथकों की, साहित्यिक शैलियों की, दार्शनिक सवालों की। इसी नींव पर आप कह सकती हैं पश्चिमी संस्कृति खड़ी है। और ये जानना सिर्फ अकादमिक तौर पर जरूरी नहीं, बल्कि आज की उलझी हुई दुनिया को समझने के लिए प्रैक्टिकल तौर पर भी बहुत कीमती है।
मुझे सबसे ज्यादा ये बात दिलचस्प लगी कि ये साहित्य समाज से कितना जुड़ा हुआ था, कि ये सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि पब्लिक लाइफ, बहस और नागरिक सोच का हिस्सा था। ये सोचने वाली बात है कि क्या आज हमारा साहित्य या सिनेमा समाज में वो भूमिका निभा पा रहा है।
ये बहुत अच्छा सवाल है। और मेरे लिए ये विचार कि हम आज भी इन किताबों से एक लगातार चलने वाली बातचीत में हैं, इन्हें पढ़ना सिर्फ इतिहास पढ़ना नहीं बल्कि हजारों साल पुरानी एक बहस में शामिल होना है, जो आज भी उतनी ही जरूरी है। ये सोचना भी रोमांचक है कि आज से 100-200 साल बाद लोग हमारे समय के साहित्य और विचारों से कैसे जुड़ेंगे, उन पर कैसी बहस करेंगे।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। यह ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।